श्री वीरसेनाचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेनाचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। आठवीं पुस्तक जो तृतीय खंड है, बंध स्वामित्व विचय, उसमें हम पृष्ठ संख्या 131 पर आ गए हैं, 131। देखो अभी यहाँ मार्गणाओं की चर्चा में मनुष्य गति संबंधी बात चल रही है, तो मनुष्य गति में जो गुणस्थानों में जो बात आई थी प्रकृति बंध की, वैसे यहाँ भी समझना, अंतर इतना ही है कि दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होने वाली जो 25 है वहाँ पर 31 समझना, और चौथे गुणस्थान में 10 के बदले 4 समझना, क्योंकि चौथे गुणस्थान में विच्छित्ति होने वाली जो 6 प्रकृतियां हैं, 4+10, 4+6+10 होती है, उसमें से 6 मनुष्य और तिर्यंचों के लिए उनके दूसरे गुणस्थान में विच्छित्ति होती है, ये कल ही बताया था उन्होंने। अब यहाँ हम 131 पृष्ठ पर नीचे से तीसरी लाइन, इन्हें पहले कहे किसका बंध विच्छित्ति होती है, क्या उदय विच्छित्ति होती है, उसकी बात करेंगे। यहाँ इन्हें अभी ये मनुष्य गति में मनुष्य वगैरह की बात चल रही है। स्त्यान वृद्धि त्रय, स्त्री वेद, मनुष्यायु, मनुष्य गति, औदारिक शरीर, 4 संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, 5 सहनन, मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी, अप्रशस्त विहाय गति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इनका पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है, पश्चात उदय। ये अभी जो हमने बंध विच्छित्ति की बात देखी, हाँ तो क्रम से देखेंगे अभी हम। दूसरे गुणस्थान में होता है मनुष्यों के लिए, तो यहाँ स्त्यान वृद्धि त्रय, अभी यहाँ बंध विच्छित्ति हुई दूसरे में, और उदय की विच्छित्ति होगी कहाँ पर, हाँ छठे में, बहुत अच्छा, क्योंकि सातवें के बाद उसका उदय नहीं है, छठे तक ही उदय है, तो उदय की विच्छित्ति छठे में होती है स्त्यान वृद्धि त्रय की। स्त्री वेद नवे में, हाँ बंद अभी सभी दूसरे की बात चल रही, मनुष्यायु 14वें उदय, 14वां गुणस्थान तक, मनुष्य गति भी 14वां गुणस्थान, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय कहाँ तक चलेगा, 13वें तक, 4 संस्थान, हाँ 13वें तक, 6 संस्थान है अभी यहाँ बात 4 संस्थानों की, इसलिए 4 लिया, 6 संस्थान 13वें तक है, औदारिक शरीर अंगोपांग भी औदारिक शरीर के साथ 13वें तक है, 5 सहनन, हाँ अभी 5 सहनन में कहाँ कहाँ कौन से 5 लिया है, हाँ हाँ असंप्राप्त हो गया पहले में गया, ये दूसरे में विच्छित्ति होने वाले लिए हैं, और जो विच्छित्ति नहीं भी हुए, बंध तो है ना, यहाँ पर बंध की विच्छित्ति है, 5 सहनन के बंध की विच्छित्ति यहाँ दूसरे में है, अभी हम उदय की विच्छित्ति देख रहे हैं, आप संस्थान कह रहे हैं, अभी सहनन देखना है, हाँ 7वें तक नीचे के 3 सहनन है, हाँ अर्धनाराज, कीलित और असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन, सातवें तक है, यानी सातवें में उसकी उदय विच्छित्ति है, बराबर। ग्यारहवें में दो वज्र नाराज और नाराज, और वज्र ऋषभ नाराज कहाँ है? तेरहवें में। इसलिए कहते हैं यहाँ पर बंद विच्छित्ति हुई, परंतु उदय की विच्छित्ति पश्चात होगी। मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी की उदय विच्छित्ति कहाँ है? चौथे में। हाँ, क्योंकि विग्रह गति में तो चौथा ही गुणस्थान अधिक से अधिक होगा मनुष्यों का। अप्रशस्त विहाय गति तेरवे में। दुर्भग दुस्वर अनादेय दुस्वर तेरवे तक। दुर्भग अनादेय और अयशस कीर्ति चौथे तक है, चौथा। हाँ नहीं, यहाँ नहीं लिया है मैंने बताने के लिए। यहाँ जो दो ही है, दुर्भग और अनादेय है, ये चौथे में उदय विच्छित्ति है, और दुस्वर की उदय विच्छित्ति तेरहवे में है। तो इसलिए कहते हैं इनका पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है, पश्चात उदय। अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध और उदय दोनों साथ विच्छिन्न होते हैं, क्योंकि सासादन गुणस्थान में दोनों का विच्छेद देखा जाता है। ये फुल स्टॉप लगाना, दंड। तिर्यक आयु, तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी और उद्योत, इनका चूंकि मनुष्यों में उदयन होता नहीं है, ये बंध की विच्छित्ति तो यहाँ हो रही दूसरे में, परंतु उदय है ही नहीं है, तो हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। अतः इनके बंध और उदय के पूर्व या पश्चात विच्छेद होने का यहाँ विचार नहीं है। बंध और उदय में हम तुलना कर रहे हैं, यहाँ उसका उदय ही नहीं है, तो हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। नीच गोत्र का पूर्व में बंध और पश्चात उदय विच्छिन्न होता है, क्योंकि सासादन में बंध के नष्ट हो जाने पर पश्चात संयता संयत में उदय का विच्छेद देखा जाता है। मैंने मनुष्यों में भी नीच गोत्र का उदय पांचवें तक बताया उन्होंने, पर ऐसे तो हम मनुष्य के साथ उच्च गोत्र का उदय देखते आए थे। अब ये कौन सी अपेक्षा ली या वो शूद्रों की अपेक्षा ली पता नहीं। हाँ अरविंद भाई क्या कहते हैं? ये मनुष्यों में संयता संयतक नीच गोत्र का उदय बताया, मनुष्य गति के साथ हमने उच्च गोत्र देखा था अभी तक। वो तो तिर्यंश है ना, वहाँ तिर्यंश की अपेक्षा पांचवे में ठीक है, परंतु मनुष्य गति के साथ हमेशा हमने उच्च गोत्र की बात देखे थे। बराबर। उन्होंने उस लिस्ट के अनुसार लिया क्या है? किसमें? कौन से टेबल में? सम्यक ज्ञान चंद्रिका में। ये नीच गोत्र कहलाते हैं मनुष्यों में भी हम, परंतु वो तो नहीं नहीं उदय की बात। मनुष्यों में भी नीच गोत्र उच्च गोत्र ऐसे कहते हैं ना, कोई अभी जो म्लेच, हाँ म्लेच वगैरह जो है वो नहीं, पर उदय के साथ विच्छेद, उदय के साथ उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं ना। हमने मनुष्य गति का जो पैकेज देखा था, उच्च गोत्र का बंध मनुष्य गति के साथ होता है, देखेंगे कुछ इसका आगे कहीं आगे पढ़ेंगे हम। और आप कहते हैं वैसे पहले, बाद में उदय के विच्छेद के साथ उसको नहीं लिया, अभी अलग से लिया। अब ये स्वोदय से बनती है कि परोदय से? तो मनुष्याय और मनुष्य गति स्वोदय से ही बनती है, ये तो आसान है ना। मनुष्यायु का उदय है और मनुष्यायु अगर बनती है तो स्वोदय से बनती है कहेंगे। तिर्यक आयु तिर्यक गति, तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी और उद्योत प्रकृतियां परोदय से ही बनती है, क्योंकि यहाँ उदय तो मनुष्य गति का चल रहा है और कोई यदि तिर्यंश गति बांधता है तो हम कहेंगे वो तिर्यंश गति का बंध परोदय में हो रहा है। क्योंकि मनुष्यों में इनके उदय का अभाव है। शेष प्रकृतियां स्वोदय परोदय से बनती है क्योंकि वे अध्रुवोदयी है, तथा किन्हीं के विग्रह गति में उदय का अभाव है तो किन्हीं का वहां ही उदय रहता है। वहां ही रहता है मैं किसको लेना? हाँ, गत्यानुपूर्वी का, वहीं पर उदय है, अन्यत्र नहीं है। इस तरह से उसमें अंतर होगा। अब ये सांतर निरंतर की बात कर रहे हैं, ये देखना है कौन सी परोदय से बनती है कौन सी स्वोदय से। अभी तो हमने देखा मनुष्याय मनुष्य गति तो स्वोदय से है, विग्रह गति में गत्यानुपूर्वी बंधेगी कहेंगे हम स्वोदय से बन रही है। हाँ देखो देखो, यहाँ हम वो लिस्ट देखते हैं 131 पर जो लिस्ट है, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान वृद्धि, ये स्वोदय से भी बनती है परोदय से भी बनती है। अनंतानुबंधी चतुष्क स्वोदय परोदय दोनों, क्योंकि क्रोधमान माया लोभ लेना है। स्त्री वेद हाँ स्वोदय परोदय, मनुष्यनी हो गए तो हम कहेंगे स्वोदय से बनती है। तिर्यक आयु परोदय से, मनुष्यायु स्वोदय से, तिर्यक गति परोदय, मनुष्य गति स्वोदय, औदारिक शरीर स्वोदय से, और विग्रह गति में उदय नहीं है फिर भी बनती है तो कहेंगे परोदय से। चार संस्थान, विग्रह गति में उसका उदय नहीं है संस्थान नाम कर्म का, तो वहां तो परोदय से बनेगी। और बाद में भी आप हाँ, जिस संस्थान के उदय में जो संस्थान बन रहे उसको कहेंगे स्वोदय से बंधा, और उदय कहीं अन्य संस्थान का है और बन रहे कोई अन्य संस्थान तो कहेंगे परोदय से बन रहे। हाँ स्वोदय परोदय दोनों कहेंगे। औदारिक शरीर अंगोपांग के बारे में भी विग्रह गति में वो तो परोदय से बनती है, बाद में स्वोदय से। पांच सहनन, तो विग्रह गति में एक तो उदय नहीं है, उदय होने पर भी पांच में से जिसका उदय होगा और बन रहा है कौन सा तो वहां कहेंगे परोदय से या स्वोदय से, यथा योगी जो है विग्रह गति में तो परोदय से ही कहेंगे। तिर्य गति प्राज्ञानुपूर्वी परोदय से, मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी विग्रह गति में तो स्वोदय से और बाद में परोदय से, क्योंकि उसका उदय ही नहीं है। उद्योत परोदय से, अप्रशस्त विहाय गति, एक तो विग्रह गति में उसको है ही नहीं है और शरीर मिश्र अवस्था में भी नहीं है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर उदय शुरू हो जाता है तो उसके पहले तो परोदय से बंधेगी, और बाद में भी अप्रशस्त विहाय गति के उदय में अप्रशस्त बंधेगी तो स्वोदय से, और यदि प्रशस्त विहाय गति के उदय में ये बंधेगी तो परोदय से। दुर्भग के उदय में बंधेगी तो स्वोदय, और सुभग के उदय में दुर्भग बंधेगी तो परोदय से। दुस्वर भी विग्रह गति में और भाषा पर्याप्ति काल जब तक पूरी नहीं होती तब तक उसका उदय ही नहीं है तो वहाँ बिना उदय के ने परोदय, और बाद में भी दुस्वर के उदय में दुस्वर बंधेगी तो स्वोदय से, और सुस्वर के उदय में दुस्वर बंधेगी तो परोदय से। नहीं
एक बार
दुस्वर पाया तो नहीं, जो कोई दुस्वर या सुस्वर नाम कर्म का उदय है पहले से तो वही रहता है लाइफ टाइम तक, वो बाद में नहीं चेंज होता। नहीं वो तो बात अलग होती है, यानी पहले आवाज अच्छा था और बाद में खराब हो गया है इसे।
ताली मिली तो अच्छा।
अब ये अनादेय जो है वहाँ विग्रहति में उदय तो है, परंतु आदेय के उदय में बंधेगी तो परो और अनादेय के उदय में बंधेगी तो स्वोदय से। नीच गोत्र परोदय से कहेंगे हम। यहाँ क्या लिखते देखो, हम देखेंगे नहीं, बाकी खाली इन्होंने ऐसे ही लिखा है। स्वोदय परोदय कहा, इतना ही कहा उन्होंने। अब नीचे का पैराग्राफ, स्थान वृद्धि त्रय और अनंतानुबंधी चतुष्क का पेज नंबर 132 निरंतर बंद होता है, क्योंकि ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां है ना, ये स्थान वृद्धि वगैरह, क्योंकि ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं, फुल स्टॉप। तिर्यक आयु और मनुष्य आयु का भी निरंतर बंध होता है, क्योंकि आयु कर्म हमने देखा था, आयु की प्रकृति वो निरंतर बंधी है, क्योंकि एक समय में इनके बंध का विश्राम नहीं होता, यही उसका कारण है। निरंतर बंध किसे कहना, एक समय में जिसका बंध रुक नहीं सकता तो उसको कहेंगे निरंतर बंध। मनुष्य गति प्रायज्ञानो पूर्वी औदारिक शरीर और औदारिक शरीर अंगोपांग का सांतर निरंतर बंध होता है, क्योंकि इनके बंध के सर्वत्र सांतर होने पर भी, सर्वत्र सांतर यानी मनुष्य गति बंधेगी या अन्य गति बंधेगी, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है तो चारों में से कोई भी गत्यानुपूर्वी बंधेगी उसको, और औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग बंधेगा या वैकिरिक शरीर वैकिरिक अंगोपांग बंधेगा, तो ऐसा वो सांतर होने पर भी आनतादिक देवों में से मनुष्यों में उत्पन्न हुए जीवों के अंतर्मूर्त काल निरंतरता पाई जाती है। आनत में से यहाँ आए हुए उनको बंधने की बात तो देवगति में देखेंगे हम, अभी हमारी मार्गणा मनुष्य की चल रही है। हाँ। तो पहले हमने देखा था ना कि आनतादिक, वहां हमने देखा था कि सनत कुमार आदि वहां से आए हुए तीर्यंचों में उत्पन्न होते तो अंतर्मूर्त तक तीर्यंच गति का ही बंद करते हैं, वैसे यहाँ आनतादिक आनत प्राण तारण अच्युत आदि वहां के देव तो मनुष्य गति को ही बांधते हैं निरंतर, उसकी बात नहीं, वो हम देवगति में देखेंगे। अब वहां से मनुष्य में आया हुआ जो है जीव तो अंतर्मूर्त काल तक निरंतर इसी का बंध करेगा, किसका, मनुष्य गति औदारिक औदारिक अंगोपांग आदि का, वो उसकी वहां की लेशा चल रही है ना। हाँ, ऑफ कोर्स मिथ्या दृष्टि आता है तो उसकी लेशा चेंज हो सकती है, परंतु यहाँ उसका ये यही बंध निरंतर चलेगा। शेष प्रकृतियां सांतर बनती है, क्योंकि एक समय में उनके बंध का विश्राम देखा जाता है। अब बाकी आगे, इनके प्रत्यय, प्रत्यय ने प्रत्येक गुणस्थान में उनके बंध के कारण कौन कौन है, इनके प्रत्यय दोनों ही गुणस्थानों में, ये जो हमने प्रकृतियां देखी है द्विस्थानिक देखी है ना, उसकी बात चल रही है, दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होने वाले प्रकृतियों की बात चल रही है, तो उसके प्रत्यय दोनों ही गुणस्थानों में तिर्यंचों की द्विस्थानिक प्रकृतियों के प्रत्ययों के समान है। हाँ। तो वहां हमने देखे थे वो वैकिरेक वैकिरेक मिश्र का योग नहीं होगा इनके, वो दो योग और कम करना, आहारक द्विक तो पहले से हम करते हैं वैसे मिथ्यात्व गुणस्थान में 55 देखते हैं, और उसमें से ये दो और कम करना। स्थान वृद्धि त्रय और अनंतानुबंधी चतुष्क को मिथ्या दृष्टि चार गतियों से संयुक्त, अभी किस गति के साथ इसका बंध हो रहा है इन प्रकृतियों का, तो मिथ्या दृष्टि तो चारों गति को बांधता है, तो वहां कोई भी गति क्यों ना बांधे, स्थान वृद्धि त्रय और अनंतानुबंधी तो बंधेगी ही मिथ्यात्व गुण स्थान में। स्त्री वेद को मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि दोनों ही नरक गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त, कॉमा लगाना। तिर्यक आयु, तिर्यक गति, निर्यक गति हुआ, तिर्यक गति, तिर्यक गत्यानुपूर्वी और उद्योत को तिर्यक गति से संयुक्त, क्योंकि तिर्यंश गति जो बांधता है उसी के साथ उद्योत बंधेगी। मनुष्य आयु, मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी को मनुष्य गति से संयुक्त, औदारिक शरीर कौमा चार संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग और पांच सहनन, इनको तिर्यक गति व मनुष्य गति से संयुक्त, क्योंकि इन दो गतियों के साथ ही सहनन का बंध होगा। देवगति नरक गति बांधने वाले को सहनन वगैरह वो नहीं होगा। तथा चार संस्थान लिया आया, कौन से दो छोड़े? ये चार संस्थान की बंध विच्छित होने वाली थी ना, इसलिए उसको लिया। हाँ, अंतिम है वो पहले में बंध विच्छित होती है। हाँ, और पहला संस्थान है सम चतुरस्र, वो तो आठवें गुणस्थान में बंध विच्छित होती है, बीच वाले जो हमने वो 25 प्रकृतियों 25 प्लस 31 में पहला और लास्ट, पहला और अंतिम। तथा अप्रशस्त विहाय गति, दुर्भग दुस्वर अनादेय और नीच गोत्र को मिथ्या दृष्टि देव गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त, क्या क्या वो पढ़ा मैंने। हाँ, निज गोत्र को मिथ्या अन्य तीन गतियों से संयुक्त, यानी मनुष्य गति संयुक्त भी निज गोत्र बनता है, ये बात यहाँ सिद्ध होती है ना। और सासाधन सम्यक दृष्टि तिर्यक गति एवं मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि सासाधन है वो नरक गति को बांधता ही नहीं है, इसलिए वो दो ही गति के संयुक्त इसको बांधता है। सासाधन गुणस्थान वाला कितनी गति का बंध करता है? तो तीन गतियों, परंतु यहाँ बात ये अशुभ प्रकृतियों की चल रही है। निज गोत्र है, दुर्भग वगैरह जो है वो देव गति के साथ कोई भी जीव बांधता ही नहीं है, इसलिए दो गति संयुक्त लिया सासाधन वाला। सब प्रकृतियों के बंध के मनुष्य स्वामी हैं, बंधाध्वान बंध विनष्ट स्थान और सादी आदि का विचार भी ओघ के समान है। जो ध्रुव बंधी प्रकृति है इसमें से वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में चारों प्रकार का बंध होता है, सादी अनादि ध्रुव अध्रुव, और सासाधन से लेकर अन्य का भी सादी और अध्रुव बंध होता है। निद्रा और प्रचला का पूर्व या पश्चात होने वाला बंधोदय विच्छेद, स्वोदय परोदय बंध, सांतर निरंतर बंध, बंधाध्वान बंध विनष्ट स्थान और सादी आदि बंध की परीक्षा ओग के समान है। अब निद्रा प्रचला की बात उन्होंने बताई, तो बंध और उदय कहाँ कहाँ विच्छित्ति होती है? निद्रा और प्रचला का बंध की विच्छित्ति आठवें के पहले भाग में, और उदय की विच्छित्ति बारहवें के उपांत समय में, हाँ सेकंड लास्ट समय, वो सोदय से बंधिए के परोदय से निद्रा, दोनों निद्रा का उदय नहीं हो तो भी बनती है, क्योंकि ध्रुव बंधी प्रकृति है। जब तक विच्छित्ति नहीं होती बंध की तब तक बनती रहेगी, अनादि से हर समय बंधेगी, तो स्वोदय से भी और परोदय से भी बनती है। शांतर है या निरंतर है? निरंतर ध्रुवबंदी है तो निरंतर है, बंधाध्वान बंधविनिष्ठ संधिका शादी है कैसे है तो अनादि भी है शादी भी है, क्योंकि वो तो ध्रुवबंदी प्रकृति है ना, उसमें वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में चारों एप्लाई हो और दूसरे गुणस्थान से ऊपर शादी और अध्रुव हो जाएंगे। अभी उसके प्रत्यय मनुष्य गति में कहे हुए प्रत्ययों के हुआ है। हाँ नहीं, ये तो लगातार बनती है, अंतर्मूर्त की बात नहीं है, ध्रुवबंधी प्रकृति है, हर समय बनती है। 47 ध्रुवबंधी प्रकृतियों में हमने 9 के 9 दर्शनावरणीय लिए थे, बंध विच्छित होने पर ही वो उसका बंध रुक जाता है, यानी 8वें गुणस्थान के पहले भाग तक लगातार अनादि से ये बनते आई है, और जब कोई जीव उपशम श्रेणी मांडेगा तो पहले भाग के बाद उसका बंध मिटेगा। हमने स्थान वृद्धि 3 के बाद देखी ना, सासादन तक उसका निरंतर बंध है। अब कोई मिथ्यात्व में से 4थे में गया तो उसका स्थान वृद्धि का बंध रुक गया, फिर वहां से दूसरे में आते ही बंध है, दूसरे के ऊपर यानी तीसरे चौथे आदि ऊपर के गुणस्थानों में बंध नहीं है। ये बीच में निकाल देना, नीचे से दूसरी लाइन में, प्रत्यय मनुष्य गति में कहे हुए प्रत्ययों के समान है, मिथ्या दृष्टि चारों गतियों से संयुक्त, निद्रा और प्रचला को बांधने वाला, मिथ्या दृष्टि तो चारों गति को बांधता है तो चारों ही गति के साथ निद्रा प्रचला का बंध करेगा। सासादन सम्यक दृष्टि 3 गतियों से संयुक्त और शेष गुणस्थानवर्ती देव गति से संयुक्त बांधते हैं, मनुष्य स्वामी है, क्योंकि हमारी मनुष्यों की प्ररूपणा चल रही है। एक एक अलग अलग प्रकृतियों की बात उठा रहे, साता वेदनीय का परीक्षा भी मूलोग के समान है। अभी साता वेदनीय का बंध कहां से कहां तक होता है, पहले ये देखते, 1 से 13वें गुणस्थान तक, बराबर। तो पहले उदय मिटता है कि पहले बंध मिटता है? उदय तो 14वें तक है, 14वें में भी है ना, और बंध 13वें तक है। ऐसे अभी हमने कौन कौन से प्रश्न देखे, देखो, वो स्वोदय से बनती है कि परोदय से बनती है? स्वोदय परोदय दोनों में बनती है। शांतर है कि निरंतर है? हाँ, दोनों। कैसे? असाता वेदनीय का बंध कब तक है? असाता का बंद, उदय नहीं, बंद, छठे तक है। हाँ, तो छठे तक शांतर निरंतर होगा और बाद में निरंतर साता का ही बंद होगा। देखो, सोदे परोदे शांतर और शादी वगैरह तो देखा हमने, वो तो शादी कहेंगे उसको, शादी और अध्रुव कहेंगे, क्योंकि उसको प्रतिपक्ष है ना इस पर। तो ये कहते विशेष यह है, प्रत्यय भेद व स्वामी भेद जानना चाहिए। अभी वो प्रत्यय भेद और स्वामी भेद, ये उसकी बात कर रहे हैं, स्वामी की बात। मिथ्या दृष्टि और प्रत्यय भेद भी कैसे? मनुष्य है, यहाँ हमारी मार्गणा मनुष्यों की चल रही है तो वहाँ वो वैकरेक और वैकरेक मिश्र का योग उसको नहीं लेंगे, उसकी अपेक्षा प्रत्यय भेद हो जाएंगे। गुणस्थानों में तो मिथ्या दृष्टि है तो 55 प्रत्यय कहते हैं, अब यह मनुष्य मिथ्या दृष्टि है तो 53 हो जाएंगे, बराबर। मिथ्या दृष्टि और सासादन समय दृष्टि साता वेदनीय को नरक गति, यहां तो मनुष्य ही है सारे। हाँ, परंतु स्वामी भेद यानी मनुष्यों में भी अभी ये बता रहे, वो स्वामी भेद, मिथ्या दृष्टि मनुष्य बांधेंगे साता वेदनीय को, परंतु वो तो किस गति के संयुक्त, तो वो बात चल रही है। मिथ्या दृष्टि और साधन सम्य दृष्टि साता वेदनियों को नरक गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त। नरक गति के साथ साता वेदनी का बंध नहीं होता, तथा उपरिम जीव देव गति से संयुक्त बांधते हैं। इस प्रकार सब पदों में प्रत्यय संयुक्त स्वामित्व भेद भी, देखो देखो ये प्रत्यय संबंधी स्वामित्व भेद कैसे बता रहे, देखो। इस प्रकार सब पदों में प्रत्यय संयुक्त स्वामित्व भेद ही है, यानी प्रत्यय वाला स्वामित्व भेद है। प्रत्यय के कारण ये कुछ स्वामित्व भेद है वो वहां होता है, वह भी सुगम है। अन्यत्र मूलोह की अपेक्षा और कुछ भेद नहीं है, जैसे गुणस्थानों में बताया था वैसे यहाँ प्रत्यय भी मनुष्य गति की अपेक्षा कहेंगे फिर भी उसमें कोई चेंज नहीं है, इसीलिए उसकी यहाँ प्ररूपणा नहीं की जाती। विशेषता यह है कि पंचेंद्रिय त्रस और बादर का बंध मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में स्वोदय और सांतर निरंतर होता है। देखो मनुष्य है, मनुष्यों का कौन सा उदय चल रहा है, पंचेंद्रिय जाति का उदय है, वे त्रस है तथा बादर ही है, तो इनका जब बंध होता है तो स्वोदय से हो रहा है। मनुष्य जब पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म बांधेगा, जब वो त्रस नाम कर्म बांधेगा, बादर नाम कर्म बांधेगा, तो हम क्या कहेंगे, ये स्वोदय से बंध रही है। स्वोदय और सांतर निरंतर होता है। सांतर निरंतर क्यों कहा, क्योंकि जो जीव अन्य जाति नाम कर्मों को बांध रहा है और कभी पंचेंद्रिय जाति को बांधेगा तो उसको सांतर कहेंगे, और निरंतर दूसरे गुणस्थान के ऊपर निरंतर कहेंगे उसको, पहले गुणस्थान में ही उसको सांतर है ना। यहाँ मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में सांतर निरंतर कहा है, उसकी भी अपेक्षा हमने देखी थी अभी, वो ऊपर आनत आदि से वहां आए हुए, वो तो मनुष्य गति को ही बांधते हैं, तो उसके साथ ये त्रस बादर को बांधेंगे। मनुष्य पर्याप्तकों में अपर्याप्त का बंध परोदय से होता है। जो कोई पर्याप्त मनुष्य है उसका पर्याप्त नाम कर्म का उदय चल रहा है, और यदि वह जीव अपर्याप्त का बंध करता है तो हम कहेंगे परोदय से बंध रहा है। इसी प्रकार मनुष्य नियम में भी कहना चाहिए। विशेषता केवल यह है कि उपघात परघात उच्छ्वास प्रत्येक शरीर इनका असंयत समय दृष्टि गुणस्थान में स्वोदय बंध होता है। क्या कहना चाहते हैं पता चले, हाँ। मनुष्यनियों में असंयत गुणस्थान में वो मिश्र अवस्था या विग्रह गति नहीं होती, क्योंकि सम्यक दृष्टि अन्य गति से मरकर जब यहाँ आता है मनुष्यों में तो मनुष्यनी नहीं होता। भाव वेद की बात है ना, यहाँ तो स्त्री वेद का उसका उदय, ना द्रव्य से और ना ही भाव से वो स्त्री होता है, तो इसलिए यहाँ कहते हैं, यानी जो मनुष्यनी है असंयत समय दृष्टि वो पर्याप्त अवस्था वाली है। दूसरी भाषा में जो मनुष्यनी है, जन्म से तो मनुष्यनी है तो मनुष्यनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में मान लेते सासाधन में जन्मे, तो बाद में उसको सम्यक तो बाद में हो सकता है, यानी उसका संयम नहीं, असंयत गुणस्थान पर्याप्त अवस्था में ही होता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, इसलिए उसको जो परघात वगैरह उच्छ्वास वगैरह का बंध होता है तब उसका उदय चल ही रहा है तभी बंध होता है। नहीं समझे प्रेरणा बेन, अब मनुष्यनी की बात छोड़ो, अन्य कोई असंयत समय दृष्टि है, मान लेते हम देवगति से आया और मनुष्यों में जन्मा है तो विग्रह गति में है, तब उसका वहाँ परघात का उदय नहीं चल रहा, प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं चल रहा और वो उसको बांध रहा है, तो क्या कहेंगे, परोदय से बंध है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी शक्यता मनुष्यनी में होगी कि नहीं होगी? असंयत वाले को नहीं होगी, क्योंकि उसके अपर्याप्त अवस्था में यानी मरकर यहाँ आने में पुरुष वेद ही होता है, स्त्री वेद वाले को ऐसा होता ही नहीं। असंयत गुण स्थान वाले को स्त्री वेद होगा ही नहीं विग्रह गति में और अपर्याप्त अवस्था में, बराबर। इसलिए मनुष्यनियों को जो परघात उच्छ्वास आदि का बंध होता है तब वो सोदय से ही होता है, क्योंकि वे पर्याप्त जीव ही है, उनमें वो विग्रह गति वगैरह नहीं पाई जाती, यानी चौथे गुणस्थान के साथ विग्रह गति नहीं है। मनुष्यनी को विग्रह गति नहीं, ऐसे नहीं बात है, चौथे गुणस्थान के साथ उनके विग्रह गति और अपर्याप्त अवस्था नहीं है। पर्याप्त होने पर वो चौथा क्या पांचवा भी गुणस्थान प्राप्त करेंगे क्या? नौवे तक भी जाएंगे, मोक्ष भी चले जाएंगे, उसकी बात नहीं है। क्या लाते हैं? यहाँ फिर पढ़ती हूँ मैं। इसी प्रकार मनुष्यनियों में भी कहना चाहिए, विशेषता केवल यह है कि उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येक शरीर इनका असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में स्वोदय बंद होता है, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में उसका चौथा गुणस्थान होता है और तब इनका उदय चल ही रहा है और इनका बंद भी होता है, तो हम कहेंगे स्वोदय से बंद होता है। तथा पुरुष वेद और नपुसक वेद का सर्वत्र परोदय बंद होता है। सर्वत्र ने कहा, देखो ये कौन सा जीव लिया है? मनुष्यनी लिया। मनुष्यनी जब पुरुष वेद का या नपुसक वेद का बंद करेगी, भले किसी भी गुणस्थान में क्यों ना हो, अभी वो नपुसक वेद का आगे तो ऊपर के गुणस्थानों में बंद ही नहीं होता है, परंतु जहां पॉसिबल है, पुरुष वेद का तो होता है ना सर्वत्र, नवे तक उसका तो बंद होगा, तो उसको परोदय से कहेंगे। वेद का, स्त्री वेद का उदय है और पुरुष वेद बांध रहे हैं तो परोदय से। अब मिथ्या तो गुणस्थान में स्त्री वेद का उदय है और नपुसक वेद बांध रहे हैं तो कहेंगे परोदय से। और स्त्री वेद के उदय में स्त्री वेद ही बांधता है पहले दूसरे गुणस्थान वाला तो कहेंगे स्वोदय से। आगे लिखा ही है, स्त्री वेद का स्वोदय बंद होता है, यानी जहां पॉसिबल है पहले और दूसरे तक ही है, बाद में स्त्री वेदी हो तो भी उसको स्त्री वेद का बंद नहीं होगा। बंद विच्छित्ति होती है ना स्त्री वेद की, उदय भले नौवे तक चले, स्त्री वेदी जीव भी बाद में तो उसको पुरुष वेद का ही बंद होता है। इनके क्षपक श्रेणी में तीर्थंकर का बंध नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला स्त्री वेद के साथ क्षपक श्रेणी पर चढ़ने का संभव नहीं है। देखो क्या बात है, स्त्री वेद वाला तीर्थंकर प्रकृति बांध तो सकता है जिसको हम मनुष्यनी कहते हैं, परंतु वो उसी भव में क्षपक श्रेणी चढ़कर तीर्थंकर और नहीं होगा और मोक्ष भी नहीं जाएगा, क्योंकि बंद किया है तो उदय होगा तीर्थंकर प्रकृति का, तो स्त्री वेद वाले को उदय नहीं है, उदय नहीं कर तो वो क्षपक श्रेणी भी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला तो नियम से तेरवे में जाएगा ही, तेरवे गुणस्थान में क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला उसी भाव में मोक्ष जाएगा ना, तो वहां प्रसंग क्या आएगा, स्त्री वेद वाले को तीर्थंकर प्रकृति के उदय का प्रसंग आएगा। ये मल्लिनाथ तीर्थंकर स्त्री क्यों नहीं है, ये ले लेना, ये तो द्रव्य की तो बात नहीं, भाव से भी कोई स्त्री वेद वाला है, हमने तो उनके चार भाव पूर्व तक बात देखी थी, वो पुरुष वेदी ही थे भाव से भी, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ गर्भ में आए हैं कोई तीर्थंकर का जीव तो पुरुष वेदी होगा। कहाँ से आए? अपराजित से आए, तो अपराजित में तो सारे पुरुष वेदी है ना, वहां तो स्त्री देविया स्त्री वो तो सोलवे तक पाए जाएंगे, वो भी जन्मते तो पहले दूसरे स्वर्ग में। अपराजित में कौन जाते हैं? भावलिंगी संत ही जाते हैं, तो वो भी वहां से गए, तो उसके पूर्वों में पुरुष थे ना, द्रव्य से तो पुरुष ही थे ना, उसकी बात है। बंद ही नहीं, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे भी तो भी उसमें उसको तो मोक्ष जाने का या तीर्थंकर प्रकृति के उदय का सवाल नहीं आता, इसलिए हाँ मोक्ष नहीं जाएगा, उसका उदय नहीं होगा, ये बात है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने की संभावना है ना, क्षपक श्रेणी चढ़े तो की बात है, वो नहीं हो सकता। ऐसा जीव अभी फिर देव में जाएगा, देव भी वापस आएगा, देव में जाते उसका पुरुष वेद है, फिर वापस आएगा तो भी पुरुष वेद है, और पुरुष वेद के साथ तीर्थंकर होके मोक्ष चला जाएगा। बंद तो हो सकता है स्त्री वेद वाले को, उदय नहीं हो सकता, ये बात यहाँ बताएं। हाँ उसका भी उदय नहीं होता है, बांधने की बात अभी आई नहीं है, उदय नहीं होता है उसका। नपुसक वेद वाले को भी नहीं होता, ये बात अभी यहाँ स्त्री वेद की चल रही है, परंतु नपुसक वेद वाले के साथ भी वो आहार का उदय नहीं है। हाँ ये हमने समय ज्ञान चंद्रिका में भी देखा था, ये स्त्री वेद वाले को बंद तो है उदय नहीं है, तो हमने पूछा भी था किसी को, वो उसका समाधान नहीं हुआ था, ये तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है, वो क्षपक श्रेणी मांड ही नहीं सकते। पहले ऐसा लगता था कि वो वेदों में परिवर्तन होता होगा, पुरुष वेद होकर वो फिर तीर्थंकर होता होगा, ऐसा भी नहीं, जन्म से जो वेद है वही आखिर तक चलता है। ये संभव है कि किसी जीव को पुरुष वेद है, स्त्री वेद है, नपुंसक वेद है, ऐसी वेरिएशन है, परंतु उस भव में जो वेद है जन्म से वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। हाँ तभी घोटाला था। हाँ देखिए द्रव्य वेद यानी शरीर का चिन्ह, जिसको हम ये लड़का है कि लड़की है कहते हैं, वो शरीर का चिन्ह, उसको द्रव्य वेद कहते हैं। भाव वेद में क्या है, अभी ये जो वेद नाम कर्म, जो वेद नाम का जो मोनीय कर्म है, किसका उदय है, तो उसका कार्य क्या है, तो स्त्री वेद को पुरुषों के प्रति अट्रैक्शन है, और पुरुष वेद वाले को स्त्री के प्रति है, और नपुंसक वेद वाले को दोनों के प्रति, दोनों को भोगने का भाव है। तो ये जो भाव है वो पुरुषों में भी पाया जाएगा, पुरुष होते हुए भी पुरुष को भोगने का भाव है, तो हम कहेंगे इसके स्त्री वेद है। वो तो समझाने का तरीका है ना, वैसे ऐसे भाव हो गए या उसका कुछ कार्य होगा उसकी बात नहीं है, उस कर्म का उदय चलता है, ये बात है वहाँ। क्योंकि हम देखते हैं ना नौवे गुणस्थान तक वेद का उदय है, परंतु वैसे वहाँ कोई भाव होते हो गए, ऐसा कोई खोटा परिणाम होता होगा या कोई कार्य उसका चलता है, ये बात नहीं है। हमने देखा किसी न किसी वेद का उदय निरंतर चलता है। अब ये जो कुछ यानी मैथुन सेवन के परिणाम है या अन्य कुछ जो है, वो उसके तीव्र उदय में होते हैं। सामान्य तो उदय हर समय चल रहा है, जैसे एक छोटा बच्चा है, एक दिन का बालक है, तो उसके भी वेद का उदय है कि नहीं हुई, तो यानी उसका सामान्य से उदय चलता है, तीव्र उदय में जो कुछ उसके कार्य बनते हैं वो बनते हैं। अब ऐसा जो किसी के स्त्री वेद का उदय है, बांधा तो पूर्व भव में है, अभी उसका उदय आ सकता है, मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों ही वेद में से कोई एक का उदय है। देवों में मात्र स्त्री वेद और पुरुष वेद, द्रव्य से जो वेद है वही भाव से वेद है देवों में, स्त्री देवियों को स्त्री वेद का ही उदय है, देवों को पुरुष वेद का ही उदय है। मनुष्यों में सब पॉसिबिलिटीज है, पुरुष होते हुए भी, मनुष्य और तिर्यंच दोनों के लिए, पुरुष होते हुए भोग भूमि में भी स्त्री और पुरुष दो ही है, वहां भी जो पुरुष है उसको पुरुष वेद है, स्त्रियों को स्त्री वेद है, नारकियों में एक नपुसक वेद ही है। हाँ हाँ तिर्यंच में पंचेंद्रिय की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि जो चौरिंद्रिय तक तो नपुसक वेद ही पाया जाता है। वो कहते हैं कि ये स्त्री है,
स्त्री है माने वो तो जैसे पुरुष, उसको माने वो लोग खाली द्रव्य वेद में ही देखते हैं कि भाव वेद में
वो पता नहीं, अभी वो द्रव्य वेद में ही मानते हैं। हाँ
अगर वो समझो कि द्रव्य वेद के बदले भाव वेद में माने तो ठीक
है, तो भी नहीं, इसीलिए वो तो हमने ये की ना, भाव भी गर्भ में आया है तो भाव से भी पुरुष ही होगा वो जीव।
देखो आप 134 पृष्ठ निकालिए, अभी आपके सामने है, ये जो बड़ा पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन में क्या लिखा है देखो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला स्त्री वेद के साथ क्षपक श्रेणी पर चढ़ने का संभव नहीं है। अभी वो क्षपक श्रेणी ही नहीं चढ़ सकता है तो उसके तीर्थंकर तेरवा गुणस्थान आवे कैसा
ये बात। और वो जन्म से भाव से तो पुरुष थे ना, भाव वेद उनका पुरुष वेद था। अभी हमने देखा क्योंकि वो तो सम्यक्त्व के साथ आए हैं, तो सम्यक्त्व के साथ कोई अन्य भाव में जाता है, सम्यक दर्शन श्रीवेद वाले को हो सकता है, परंतु सम्यक दर्शन होने के बाद वो मरकर अन्य गति में चला जावे, देव में, तिर्यंश में या मनुष्य में, तो उसके सम्यक तो बना रहता है, तो उसको पुरुष वेद ही होगा। एक्सेप्शन है नरक में जाने वाले, वहां तो एकमात्र नपुंसक वेद ही होता है, तो वहां तो वो जाएगा नपुंसक वेद में, अन्यथा उसके तो पुरुष वेद ही होगा। तो ये वहां तो क्या है, स्त्री को मुक्ति भी मानी है, इसलिए एक तीर्थंकर को स्त्री ही बना दिया, क्योंकि वो अपना उनका ऐसा है ना, कुछ रचना अलग हो गई है, छूटकर कोई अन्यथा रचना हुई है, तो उसके पोषण के लिए ऐसा हो जाए। अब वो कहीं, मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहीं पढ़ा है, आप मल्लीनाथ को तीर्थंकर मानते हो और मूर्ति तो पुरुष की बनाते हो, ऐसा भी है ना। तो अभी ये नया फैड निकला है, कहीं मुझे अमेरिका में वो स्त्री वाले मल्लीनाथ की तीर्थंकर बनने वाले ये तो चलता रहता है, अपने मत का पोषण कोई गलत प्रस्तुत किया तो अभी उसके छिपाने के लिए और 10 गलतियां और करेगा जी। अभी उनकी तो
बात ऐसी है, जो जिनेंद्र भगवान यानी जो दिगंबर आमना के अनुसार जो कोई कथन है उससे कुछ ना कुछ जुदा करके अपनी बात को कन्फर्म करना यानी वो चलाना चाहते हैं, और क्या है, सर्वज्ञ के कहे अनुसार जो बातें आगे चलेगी वो तो एक जैसी ही चलेगी, और यहाँ क्या हो रहा है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने मत कल्पना के अनुसार उसको आगे ये करता है। जैसा कहते हैं मुसलमान लोग और अपने जैनियों में बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है, हम लोग रात को नहीं खाएंगे, वो रात को ही खाते हैं पर्टिकुलर डेज में, ख्याल में है? हाँ, जो भी है अभी उनका, अभी देखो हम हाथ धोते हैं तो ऐसा ऊपर से नीचे हाथ धोते हैं, ऐसा कभी भी देखना आप हाथ कैसा धोते हैं, और वो लोग ऐसा हाथ धोते हैं, यानी बिल्कुल उल्टा करने का, ये मैं कहना चाहता हूँ। वैसे यहाँ पर भी स्त्री को मुक्ति नहीं है, तो जैसा अपने यहाँ 2 किलो चावल सबको फ्री देंगे वैसा चलो स्त्रियों को भी मुक्ति देंगे ताकि अपनी भीड़ बढ़ जाए ना, ये एक अपेक्षा है, पॉसिबिलिटी है। इस तरह कुछ ना कुछ जुदी जुदी बात रिप्रेजेंट करके अभी यहाँ तक नौबत आई है कि मल्लीनाथ का स्त्री के अवस्था में उनकी मूर्ति बना रहे हैं। अब बनेगी नहीं बनेगी वो बात जुदी है, लेकिन कल्पना तो दिमाग में चल रही है लोगों की। अभी अपना जो कहना है कि यहाँ जो बात बताई जा रही है वो बिल्कुल मतलब कितनी रीजनिंग यानी रीजनेबल कहो या रीजन के साथ है, यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई जो पुरुष है और उसके भाव स्त्रीवेद चल रहा है वह क्षपक श्रेणी नहीं मान सकते, कब कि जब वो तीर्थंकर होगा तब
तीर्थंकर की सत्ता वाला,
हाँ तीर्थंकर की सत्ता है उनके,
स्त्रीवेद वाला क्षपक श्रेणी नहीं मानता ये बात नहीं है ना, तीर्थंकर की प्रकृति बांधने वाले की बात चल रही,
यानी कोई अन्य है जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी नहीं है या उनके सत्ता में नहीं है तो मोक्ष भी जावे।
चलो अभी हम अगला सूत्र,
अभी मूल बात क्या है हमारी, ये पहले से भूल होती थी कि हम ऐसा समझते थे कि तीन जो है ना मतलब तीर्यंच और मनुष्य में तीन वेदों में से कोई एक वेद होता है, तो हम ऐसा मानते थे कि अंतर मुहूर्त तक कोई एक वेद होगा, फिर बदलेगा फिर बदलेगा फिर बदलेगा, ऐसी पहले हमारी मान्यता थी, लेकिन अभी जब हम सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़ चुके या अभी धवला पढ़ रहे हैं तो वहां तो एक बात निश्चित हो गई कि जन्म से जो वेद होगा वही उसके उस लाइफ टाइम तक रहेगा, उस भव तक रहेगा, ये बात मालूम नहीं थी, इसलिए ये जो बात बताई जा रही थी वो हमको भी बराबर पकड़ में नहीं आ रही थी, अभी थोड़ा सा ख्याल में आ रहा है, जो आपका प्रश्न था ना उसका ये उत्तर
है। अब 76 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे हम। मनुष्य अपजत्तानम पंचिंद्रिय तिरिख अपजत्त भंगो, मनुष्य अपर्याप्तों की प्ररूपणा पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्तों के समान है। यह यानी ये जो समानता है वो बध्यमान प्रकृतियों की संख्या से समानता की अपेक्षा करके पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्तों के समान है ऐसा कहा गया है। यहाँ कौन सी प्रकृतियाँ 109 कही, मिथ्यात्व अवस्था में तो कितनी बन सकती है, क्योंकि ये एकमात्र मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है ना। यहाँ पर मनुष्य अपर्याप्तों को मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है, हाँ, तो वो 117 बंधे योग्य प्रकृतियाँ होती है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वाले, उसमें इन अपर्याप्तों को कौन सी प्रकृतियाँ नहीं बनेगी बाद में हम पढ़ेंगे, अभी हम पहले हाँ देव गति नहीं बनेगी, नरक गति, और दोनों की अनुपूर्वी भी नहीं बनेगी, दोनों आयु भी नहीं बनेगी, और वैकृत अंगोपा ये कितने हुए, 8 हुए, 117 में से 8 बाद करो। 117 क्यों आई, क्योंकि बंधे योग तो 120 होती है, आहारक आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर प्रकृति का बंध मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में नहीं होता, तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में 117 बंध योग्य प्रकृतियां हैं, उसमें से मनुष्य अपर्याप्त या तिरियंच अपर्याप्त कौन कौन सी बांधेगा या नहीं बांधेगा उसकी चर्चा है। तो ये संख्या की अपेक्षा समानता उन्होंने बता दी, पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त भी इतने प्रकृतियों को नहीं बांधता, ये अष्ट प्रकृतियां कही ना देव और नरगति संबंधी। पर्यायार्थिक न्याय का अवलंबन करने पर भेद पाया जाता है, फिर भी पंचेंद्रिय तिरियंच में और मनुष्य में क्या भेद है उसकी बात कर रहे, वह इस प्रकार है, 5 ज्ञानावरणीय, 9 दर्शनावरणीय, 7 असाता वेदनीय, हाँ, मिथ्यात्व 16 कषाय, 9 कषाय, तिर्यक आयु मनुष्यायु, तिर्यक गति मनुष्य गति, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय जाति, औदारिक तेजस्व कारमान शरीर, 6 संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, 6 सहनन, वर्ण गंध रस स्पर्श, तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास आताप उद्योत, 2 विहाय गतियाँ, त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर साधारण शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यश कीर्ति अयश कीर्ति, निर्माण निज गोत्र उच्च गोत्र, और 5 अंतराय, ये यहाँ बद्यमान प्रकृतियां है। कौन सी नहीं है उसको हमने हटाया था, कौन सी बनती है उसकी बात उन्होंने बताई। इनमें स्त्यान ग्रुद्धित्रय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, कमा कमा लगाना, अभी ये जो हमने लिस्ट देखी ना, तो इसमें से पहले बंध विच्छित्ति होती कि उदय विच्छित्ति होती है आदि आदि सवाल होना चाहिए। तो पहले में पहले ऐसी प्रकृतियां बता रहे कि जिनका यहाँ उदय ही नहीं होता। हमने पंचेंद्रिय अपर्याप्त तिरियंचों में भी देखा था स्त्यान ग्रुद्धित्रय का उदय नहीं पाया जाता, तो यहाँ भी लिखा, ये फिर दोबारा ये लिस्ट पढ़ेंगे अभी हम, ये अभी यहाँ से इनमें लिस्ट तो पूरी बता दी कितनी बंध योग्य है, 109 की बात की ना उन्होंने, उसमें से स्त्यानुग्रुद्धित्रय का उदय नहीं है, स्त्रीवेद पुरुषवेद का उदय होगा कि नहीं होगा, मनुष्य है अपर्याप्त है ना, लब्धि अपर्याप्तकों में एकमात्र नपुसक वेद का ही उदय है, तिर्यक आयु तिर्यक गति का उदय होने का सवाल नहीं है, मनुष्य है, वैसे उसकी अनुपूर्वी भी आगे बताएंगे। फिर अभी यहाँ कौन से जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है, पंचेंद्रिय, तो एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरिंद्रिय जाति का भी उदय नहीं है, हुंड संस्थान का उदय है उसकी उसके अलावा, अन्य पांच संस्थान का भी उदय का अभाव है। असंप्राप्त सुपाटिका सहनन को छोड़कर असंप्राप्ता करना, क्योंकि ये भी उनके सबसे हीन वाला सहनन चल रहा है, उसको उसके अलावा अन्य किसी सहनन का वहाँ उदय नहीं है। पांच सहनन, तीर्य गति प्रायज्ञानों पूर्वी, वो तो हमने गति के साथ देखा था। परघा तुच्छवास आतप उद्योत, आतप उद्योत तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मनुष्य है, तिरियंच ही नहीं। परघात और उच्छ्वास को क्यों छोड़ा? अपर्याप्त जीव है ना ये, शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं है, उसके बाद इसका उदय शुरू होता है। दो विहाय गति के बारे में भी यही रूल है, पर्याप्ति पूर्ण, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर उसका उदय होता है। स्थावर सूक्ष्म ये तो तिर्यंचों में होते हैं, एक इंद्रियों में होते हैं, पर्याप्त यहाँ नहीं है क्योंकि ये अपर्याप्त का उदय चल रहा है। साधारण भी एक इंद्रियों में होते हैं, सुभग सुस्वर का भी उदय नहीं है यहाँ, और ना ही सुस्वर का ना ही दुस्वर का, क्योंकि वो भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर स्वर नाम कर्म का उदय चालू होता है। आदेय यश कीर्ति उच्च गोत्र भी उदय का अभाव है, ओ ये अपर्याप्त में निज गोत्र का उदय है। इनका उदय अभाव होने से ये सारी अप्रशस्त प्रकृति है ना, हाँ निज गोत्र नहीं, इनके भी निज गोत्र है। विद्यमान बंध और अविद्यमान उदय में क्या कहते हैं, बंध क्या है, विद्यमान है, हो रहा है, और उदय है नहीं है, तो विद्यमान बंध और अविद्यमान उदय इनमें समानता न होने के कारण, यानी उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। दो विद्यमान बातों की तुलना हो सकती है, एक है और एक है ही नहीं है, तो उसकी तुलना नहीं हो सकती कि कहाँ पर एक कहाँ रुका और दूसरा कहाँ रुका। अरे दूसरा आया ही नहीं पहले से, यहाँ उदय ही नहीं हुआ, रुकने का सवाल नहीं है। इसके कारण पूर्व या पश्चात होने वाले बंधोदय विच्छेद की परीक्षा नहीं की जाती। इतने प्रकृतियों के बारे में तो उसका उदय ही नहीं है, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। शेष प्रकृतियों के भी बंध के समान यहाँ उदय का विच्छेद न होने से उक्त परीक्षा नहीं की जाती। ये सारे मुथ्यात्व गुणस्थान वाले ही है, और यहाँ उसकी भी विच्छेदी नहीं देखी जाती। एकमात्र गुणस्थान है ना मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, तो यदि उसके ऊपर जाए तो हम कहेंगे इसके बंधे की विच्छित्ति हुई, तो वो भी नहीं कह सकते। अब ये स्वोदय से होता है कि परोदय से उसकी बात चलेगी। पांच ज्ञानावरणीय स्वोदय के परोदय, स्वोदय चार दर्शनावरणीय स्वोदय, मिथ्यात्व, नपुसक वेद, मनुष्यायु, ये सभी स्वोदय की बात है। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस्व कारमान शरीर, वर्णाधिक चार, अगुरु लघु, त्रस बादर अपर्याप्त, ये अपर्याप्त जीव है ना, लब्धि अपर्याप्त का अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, ये तो हमेशा ही उदय रूप होती है, दुर्भग अनादेय अयश कीर्ति, निर्माण, नीच गोत्र और पांच अंतराय, इनका स्वोदय बंद होता है क्योंकि इनका उदय चल रहा है। यदि इनका बंद होता है, ये बंद तो होता है ना, ये पांच ज्ञानावरण आदि तो ध्रुव बंदी है, इसमें से कितने ही सांतर वाले हैं, फिर भी जब बंद होगा तो हम कहेंगे वो स्वोदय से हो रहा है। निद्रा प्रचला सातावा असाता वेदनीय, ध्रुवोदय ना, हाँ साता का उदय। देखो निद्रा प्रचला, यह स्थान वृद्धि को नहीं लिया है, उसका उदय नहीं है। हाँ तो निद्रा प्रचला साता असाता वेदनीय, 22 कषाय किसको छोड़ा? किसको छोड़ा? हाँ, नपुंसक वेद को लिया, कषाय 25 में से 22 कैसे लिया? हाँ, अपर्याप्त अवस्था में क्या नहीं है? देखो, अनंतानुबंधी आदि तो 16, वेद में एक 17 हुआ। हास्यरति चार कम हो जाएगी। ये 22 कषाय ही बनते हैं, इसी का उतने है उसकी बात नहीं, वो स्वोदय से होते कि नहीं उसकी बात चल रही। देखो आगे पूरा पढ़ेंगे तो ख्याल है, कौन से स्वोदय परोदय से बंद होता है उसकी बात चल रही। स्वोदय और परोदय दोनों से बंधने वाली प्रकृतियों की लिस्ट। हाँ, अकेला स्वोदय से बनता है, परोदय से बनता है उसकी बात है। देखो, निद्रा प्रज्वला साता साता 22 कषाय, औदारिक शरीर हुंड संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन, मनुष्य गति प्राज्ञानु पूर्वी, उपघात और प्रत्येक शरीर, इनका स्वोदय परोदय से बंध होता है क्योंकि ये अध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। सहनन का उदय ही नहीं है उनके, का विग्रह गति में उदय नहीं है, बाद में उदय है, इसलिए स्वोदय परोदय दोनों लिया। हाँ, साता का उदय हुआ, यहाँ लिखा है ना, स्वोदय परोदय दोनों कहा, साता का उदय में साता की भी बन रही है। साता जो स्वोदय परोदय दोनों में बन रहा है ऐसा लिया यहाँ। तथा किन्हीं का विग्रह गति में उदय नहीं रहता और एक का विग्रह गति में ही उदय रहता है, एक कहने अनुपूर्वी का, शेष प्रकृतियां परोदय से ही बनती है। ऊपर कितने लिखे निम्न वास कसाय, वास का 22 किया उन्होंने, वास पुदतम, वास कसाय, पहली लिस्ट देखो ना आपने, 16 कषाय लिखा, 9 कषाय लिखे वहां, यहाँ सब इकट्ठा लिया। पहले दूसरे को लिया था मिथ्या तो नपुंसक वेद को पहले उन्होंने लिया था। वो स्वोदय में ही बनती है, उसको लिया था ना, पहले ही उसको बाध किया था। हाँ, तो 25 में से एक गया वहां, तो 24 रह गया। तो ये भाई जुगुप्सा वाले लिए होंगे, स्वोदय परोदय से बंधने वाले। भाई जुगुप्सा बनती तो निरंतर है, उसका उदय हो भी या नहीं भी हो, यही हो सकती है, क्योंकि नपुंसक वेद को पहले हटाया था, 24 में से वो भय जुगुप्सा वाले लिए। हाँ कर सके ना, इसीलिए यहाँ लिया ना, 22 कषाय में लिया उसको, वहाँ उसका वेद किसके उदय में कर रहा है? भय जुगुप्सा, भय जुगुप्सा के उदय नहीं होने पर भी बंद होता है, सोदय परोदय में उसको लेना। नपुसक वेद और भय जुगुप्सा को छोड़कर यानी भय जुगुप्सा के उदय में भी भय जुगुप्सा बनती है तो हम कहेंगे स्वोदय से बन रही, और उसका उदय नहीं होने पर भी बनती तो हर समय है तो कहेंगे परोदय से बनती है, और बाकी जो है वो कुछ परोदय से ही बनती है। अब ये शांत निरंतर की बात करेंगे, 5 ज्ञानावरणीय, 9 दर्शनावरणीय, ये सारी ध्रुवबंदी की बात चल रही है। मिथ्यात्व 16 कषाय भय जुगुप्सा, यहाँ तक तो ध्रुवबंदी वो निरंतर भी होगी। तिर्यक आयु मनुष्यायु आयु कर्म भी निरंतर बंदी होता है, उसको भी लिया। औदारिक तेजस कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये औदारिक शरीर लिया यहाँ क्योंकि ये अपर्याप्त जीव है, देव गति नहीं बांधता तो वैकृत शरीर को भी नहीं बांधेगा, इसलिए हर समय औदारिक शरीर नाम कर्म को ही बांध रहा है, इसलिए वहाँ निरंतर लिया। क्योंकि तेजस कारमान तो हर समय हर एक को बनती है, वो तो ध्रुवबंदी है, परंतु औदारिक शरीर ध्रुवबंदी नहीं होते हुए भी यहाँ लिया निरंतर बंध में, क्योंकि अपर्याप्त जीवों को वैकृत शरीर वैकृत अंगोपांग का बंध नहीं होता, वह औदारिक यानी मनुष्य का बंध करेगा या 3 इंच का करेगा, मनुष्य गति बांधेगा या 3 इंच गति बांधेगा, तो उसको औदारिक शरीर नाम कर्म ही बंधेगा हर समय, इसलिए निरंतर में लिया उसको। वही तो लिस्ट है ये सोदय परोदय से बंधने वाले की लिस्ट। देखो ये सोदय परोदय से बंधने वाले ही ये चल रही लिस्ट यहाँ पर, वही तो लिया ना उसको सोदय पर। अच्छा अच्छा उसको इंक्लूड करना कहते आप, हाँ हाँ अच्छा उसको लेना और किसको निकालना ये बात करें आप। हाँ वो हास्य रति के भी देखना पड़ेगा फिर दे। स्त्री वेद पुरुष वेद निकालेंगे और एक किसको निकालेंगे? हाँ पर स्वोदय और स्वोदय से स्वोदय परोदय दोनों में बनने वाली प्रकृतियाँ चाहिए। ये बाद में जो लिखा ना शेष प्रकृतियाँ परोदय से ही बनती है, वहाँ लेना स्त्री पुरुष वेद को, परोदय से ही बनने वाले में स्त्री और पुरुष वेद को लेना, परोदय से ही वाली वहां लेना। अकेले परोदय से बंधने वाली स्त्री पुरुष वेद, अकेले स्वोदय से बंधने वाली नपुसक वेद, यानी यहाँ तीनों वेद निकाले। ख्याल में 25 कषाय में से नपुसक वेद अकेले सोदय से बन रहा है, स्त्री पुरुष वेद बन रहा है वो परोदय से बन रहा है, अकेले परोदय से बन रहा है, यानी तीनों वेद की बात हो गई, तो तीन को मिटाकर बाकी जो 22 कषाय उसको यहाँ लिया, वो जो सोदय से भी और परोदय से भी बनते हैं। बराबर है, वो तो हमने परोदय की बात कर रहे थे वहां पर, सोदय परोदय। इन्हें उसको तो रखना था, हमने निकाला था उसको, इन्हें अकेले परोदय से ही बंद होता है, उसमें स्त्री वेद पुरुष वेद आदि उसको लेना, कषाय में से उसको दोनों को रखना यहाँ। तीन वेद निकालना, तीन वेद में नपुसक वेद स्वोदय से ही बनता है, स्त्री पुरुष वेद परोदय से ही बनते हैं, और हमारी लिस्ट थी स्वोदय परोदय दोनों में बनने वाले, तो वेदों के बिना अन्य को लेना वहां। यानी 22 कषाय के ऊपर लिखना तीन वेद बिना 22 कषाय, और परोदय से ही बनती उसमें स्त्री पुरुष वेद लिखना। अब परोदय से ही बनती है उसमें वो हम देखते हैं, एकेंद्री द्विंद्री तीनद्री चतुरिंद्री जाति वो परोदय से बन रही है, अन्य सूक्ष्म जो एकेंद्री संबंधी जो कुछ होगी वो परोदय से बन रही है, ऐसा कहेंगे हम सब। कोई आतप उद्योत बांध रहा है, कोई क्या बांध रहा है, तो वो सारी परोदय, क्योंकि ये मनुष्य है, जिसका उदय नहीं उसका बंद हो रहा है, वो परोदय से बन रही है सारी। एक संस्थान हुंड संस्थान का उदय है और अन्य संस्थान बन रहे हैं, अन्य संसाधन बन रहे तो उसको हम कहेंगे परोदय से बन रहे। अब ये निरंतर बंदी की बात चल रही है, हमने देखा था ये अभी, आयु को भी देखा और ये सारी लिस्ट पढ़ी हमने, वर्ण गंध रस स्पर्श अगुरु लघु उपघात निर्माण और पांच अंतराय, इनका निरंतर बंध होता है, क्योंकि बंध की अपेक्षा ये प्रकृतियां ध्रुव है यहाँ के लिए। अपर्याप्तों में औदारिक शरीर को ध्रुव प्रकृति में गिना, निरंतर बंदी में लिया, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में अन्य कोई प्रकृति यानी वैक्रियक संबंधी कुछ नहीं बनता, शेष प्रकृतियों का सांतर बंध होता है, क्योंकि एक समय में उनके बंध का विश्राम देखा जाता है, जैसे आतप है उद्योत है या परघात है उच्छ्वास है, उसको एक समय में बंध रुक सकता है उसका। शंका, तिर्यक गति तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी और नीच गोत्र के बंध में सांतर निरंतरता क्यों नहीं कहते, नहीं कहते, क्योंकि तेज कायिक वायु कायिक और सातवी पृथ्वी के नारकियों का मनुष्यों में उत्पत्ति का अभाव है। पहले बात की थी उन्होंने कि वहां से आए हुए मनुष्यों में अंतर्मूर्त तक तिर्यंच गति का ही, तिर्यक गति का ही बंद होगा, तिर्यंच आयु नहीं मगर प्राज्ञानुपूर्वी और निज गोत्र का ही बंद होगा, ये हमने तिर्यंच अपर्याप्त में लिया था। तो प्रश्नकार का प्रश्न था ऐसे यहाँ भी क्यों नहीं कहते, तो वहाँ मनुष्य में उत्पन्न ही नहीं होते इसलिए नहीं है। अभी प्रत्ययों की बात करेंगे, प्रत्ययों की प्ररूपणा तिर्यंच अपर्याप्तों के समान करना चाहिए, तिर्यक आयु। अभी अपर्याप्तों में कौन कौन से प्रत्यय नहीं होंगे, मिथ्यात्व रखना, अविरति रखना, कषाय रखना, कषाय में भी वेद नहीं लेंगे दो, उसका उदय नहीं ना दो वेदों का, और योग में हाँ वैक्रेक वैक्रेक मिश्र भी निकालना और औदारिक भी निकालना, हम बचपन देखते ना उसमें से इतने कम कर देना। अब कहते तिर्यक आयु तिर्यक गति एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरिंद्रिय जाति तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी आताप उद्योत स्थावर सूक्ष्म और साधारण शरीर को तिर्यक गति से संयुक्त बांधते हैं। किस गति के साथ बांधते हैं उसकी बात चल रही है, तो ये तिर्यक गति के साथ बनने वाली प्रकृतियां एकेंद्रीय द्विंद्रीय तीनद्रीय चतुरिंद्रीय आदि सारी तिर्यंच गति की बात है। पंचेंद्रिय जाति बांधता है तो मनुष्य गति के साथ भी बांधता है और तिर्यंच गति के साथ भी बांधता है, अपर्याप्त है ना बांधने वाला मनुष्य, अपर्याप्त देव गति को नहीं बांध रहा है। अन्यथा नॉर्मल अगर गुणस्थान की बात करेंगे मिथ्या दृष्टि जीव पंचेंद्रिय जाति किस गति के साथ बांध रहा है, तो चारों गति के साथ, परंतु उन्होंने पहले ही बता दिया यहाँ मनुष्य अपर्याप्तों की बात है, तो मनुष्य अपर्याप्त है और ये आतप उद्योग स्थावर सूक्ष्म साधारण बांध रहा है, तो उसके साथ कौन सी गति बन रही है, तो तिर्यंच गति। मनुष्यायु मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी और उच्च गोत्र को मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं। नहीं नहीं वहाँ क्या कहते हैं, उच्च गोत्र को तो मनुष्य गति के साथ बांध रहे, परंतु मनुष्य गति के साथ नीच गोत्र को भी बांधेंगे, यानी उच्च गोत्र को मनुष्य गति के साथ बांध रहे और नीच गोत्र को उसमें भी तिर्यंच गति और मनुष्य गति। ऐसा नहीं, निज गोत्र का बंधक किस गति के साथ होता है, ऐसा उल्टा पड़ना तो उसमें दो ही गति है, कहती है दो ही गति है। निज गोत्र किस गति के साथ बनता है, पहले आए थे नहीं ये बात, निज गोत्र नहीं बांधता ऐसा लिखा है क्या? निज गोत्र के बंधक की लिस्ट देखना, अभी जो हमने पढ़ा उसकी बात है ना, 133। हाँ, हमने पढ़ा ना निज गोत्र को मिथ्या दृष्टि देवगति के बिना तीन गतियों से संयुक्त बांधते। निज गोत्र को तो बांध सकता है, परंतु यहाँ उच्च गोत्र मनुष्य गति के साथ ही बांधेगा, वो तिरंज गति के साथ निज गोत्र ही बांधेगा। मनुष्य के साथ निज गोत्र बंधन की बात अभी देखी ना, अभी हाँ, वो संयता संयत जो हमने देखा, उदय तो दोनों है, बंध भी दोनों है। अभी देखा ना मिथ्या दृष्टि जीव तीन गति में के साथ निज गोत्र का बंध कर सकता है, मनुष्य गति के साथ भी, तिर्यंच गति के साथ भी और नर गति के साथ भी। अभी देखा 133 पेज पर, या पहले जो हमने लिस्ट देखी थी, नहीं शुरुआत में होनी चाहिए ये, देखो ये पहले हमने जो प्रत्यय देखे दूसरे गुणस्थान में विच्छित्य होने वाले, हमें चाहिए कि वो द्विस्थानीय प्रकृति का जो बंध विच्छित्य होती है ना, वो तो तीर मनुष्यों में ऐसे नहीं, गुणस्थानों में देखना चाहते हम। कहाँ पर पेज नंबर? उच्च गोत्र को उसके साथ बांधता है, उसकी ना नहीं है, नीच गोत्र को किसके साथ बांधता है ऐसा पढ़ना है। ये नीच गोत्र जो है ना दूसरे गुणस्थान में बंधे विच्छित्य होने वाले जो 25 प्रकृति हमने देखी थी उसके साथ उसकी बात आई। अभी तो हमने स्पष्ट शब्दों में पढ़ा भी है 133 पृष्ठ पर वहीं से। चल अभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो ढूंढने में टाइम जाएगा अपना। ये 25 की बंधे विच्छित्ति जहाँ कही थी ना उसके आगे वहाँ देखना पड़ेगा। हाँ द्विस्थानीय बंध मैंने ऐसा लिखा भी था साइड में 25 करके। चलो अभी आगे पढ़ेंगे, ये शायद उसमें आएगी वो। हाँ देखो देखो 25 प्रकृति 30 पेज है। हाँ 30 पेज है, 30 उसका स्वामित्व और किसके साथ संयुक्त। गति संयुक्त यहाँ है। देखो यहाँ पर 35 पेज पर तीसरी लाइन, अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुस्वर अनादे और नीच गोत्र को मिथ्या दृष्टि देवगति के बिना तीन गतियों से संयुक्त। यही बात आई ना जो हमने अभी 133 पृष्ठ पर देखी थी, नीच गोत्र को भी मनुष्य गति संयुक्त लिया है। वो तो बांधता ही नहीं ना नरक गति। यानी उच्च गोत्र को बांधेगा तो मनुष्य गति के साथ बांध रहा है, और नीच गोत्र को, हाँ, तो मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति तीनों के साथ बांधता है। यानी यहाँ उच्च गोत्र की बात आई परंतु नीच गोत्र नहीं बांधता ये बात नहीं आई, ख्याल है ना। अब हम पढ़ेंगे आगे, देखो ये जो अपर्याप्त जीव मनुष्य गति बांध रहा है, उच्च गोत्र बांध रहा है, तो उच्च गोत्र वो किस गति के साथ बांधेगा? उसके तो देवगति नरक गति बनती ही नहीं है। और नरक गति ये तिर्यंच गति और मनुष्य गति दो ही गति बांध रहा है, उसमें से उच्च गोत्र किसके साथ बांधेगा? तो मनुष्य गति के साथ बांधेगा, ये बात हो रही है। शेष प्रकृतियों को तिर्य गति मनुष्य गति के संयुक्त बांधते, मनुष्य स्वामी है, बंधाध्वान बंध विनष्ट स्थान और सादी आदि की प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों की प्ररूपणा के समान है। ये जो कोई ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं मिथ्या दृष्टिगुण स्थान में चारों प्रकार की होती है। अब ये मनुष्यों संबंधी प्ररूपणा समाप्त हुई, अब देवों की बात चलेगी। देवगदीय देवेशु पंच नानावर्णीय छ दंशनावर्णीय सादा साद बारस कसाय पुरिस वेद हस्सरदि अरदि सोग भय दुगुंछा मनुष गई पंचेन्द्रिय जादि ओरालिय तेजा कम्मय शरीर समचौरस संठान ओरालिय शरीर अंगोवंग वज्रिस संगड़न वन्न गंधरस फास मनुषाणुपूवी अगुरु अलहु उवघात परघात उत्सास पसत्थ विहाय गति तस बादर पज्जत पत्ते शरीर थिराथिर सुह असुह सुभग सुस्सर आदेज जसकित्ति अजसकित्ति निमिण उच्चागोद पंचंतरियाणम को बंधो को अबंधो। तो ये सारे देवगति में तो चार गुणस्थान होते हैं, तो पहले से चौथे तक उसकी अपेक्षा से चौथे में जो बन सकते हैं उसकी अपेक्षा यहाँ लिए। क्योंकि देवगति वाले तिर्यंच गति को भी बांध सकते हैं, परंतु ये चौथा गुणस्थान वाला नहीं बांध सकता ना, तो चौथे गुणस्थान वाला जो बांध सकता है उसकी लिस्ट यहाँ दी है। यह सूत्र सुगम है। मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव असंयत संवाद इट्ठी बंधा, हिंदी पढ़ा ही नहीं। देखो यहाँ ये 77 की अभी हम अर्थ देखते हैं नीचे हिंदी में। देवगति में देवों में पांच ज्ञानावर्णीय छह दर्शनावर्णीय। देखो तीन को छोड़ा क्योंकि पहले दूसरे गुणस्थान वाले तो बांधते हैं स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा पिछला पिछला, तीसरे चौथे वाले नहीं बांधते। हमें ऐसी प्रकृतियां चाहिए जो पहले से चौथे तक सभी जीव बांधते। साता व असाता वेदनीय बारह कषाय, इसलिए 12 लिए 16 नहीं लिए। पुरुष वेद उसमें भी यही अपेक्षा लेना, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति। वो मिथ्या दृष्टि कोई देव है तो एकेंद्रिय जाति को भी बांध सकता है ना, और तिर्यंच गति को तो बांधेंगे पहले दूसरे गुणस्थान वाले। औदारिक तेजस कारमन शरीर समचतुरस्र संस्थान, अन्य संस्थानों के बंध विच्छित्ति पहले होते दूसरे तक, औदारिक शरीर अंगोपांग वज्र शब सहनन, यह भी इसको लेना है। वर्ण गंध रस स्पर्श मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहाय गति, और प्रशस्त विहाय गति भी दूसरे में चली गई। त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग सुस्वर आदेय यश कीर्ति अयश कीर्ति, इसका बंध तो छठे तक चलता है ना, इसलिए यहाँ चौथे तक तो होगा। बाकी अप्रशस्त प्रकृति आप दूसरे में ही निकाल दी, अयश कीर्ति रहती यहाँ पर। निर्माण उच्च गोत्र और पांच अंतराय, इनका कौन बंधक और कौन अबंधक है, इसका उत्तर देते हैं अभी। यह सूत्र सुगम है। मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव असंजत सम्मा इट्ठी बंधा एदे बंधा अबंधान थी। इन प्रकृतियों के बारे में चौथे तक बनते हैं तो अभी चार ही गुण स्थान है देवों में, तो उनमें अबंधा कोई रहता है नहीं। मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक बंधक हैं, ये बंधक है अबंधक नहीं है। यह सूत्र देशामर्शक है, इसलिए इससे सूचित अर्थ की प्ररूपणा करते हैं। अभी कितने प्रकृतियां ऐसी कि यहाँ उदय ही नहीं है, तो ये उदय पहले रुका के बंद पहले रुका, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऐसी कौन सी प्रकृतियां, तो मनुष्य गति उसका उदय नहीं है ना, यहाँ देवगति का उदय। औदारिक शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग वज्र ऋषभ सहनन मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी, और अयश कीर्ति, देखो अयश कीर्ति का बंध तो हो सकता है यहाँ, ये चौथा वाला है यहाँ देवों में, तो अयश कीर्ति चौथा है इसलिए नहीं, देवों में उसका उदय नहीं है, देवों में यश कीर्ति का उदय है। उसमें भी यश कीर्ति का उदय हुआ। इनके उदय का अभाव होने से लिखा ना, यदि किसी में उदय होता तो बता देते, उनका उदय का अभाव होने से बंध और उदय के पूर्व या पश्चात विच्छेद होने की परीक्षा नहीं की जाती। शेष प्रकृतियों की भी वह परीक्षा नहीं की जाती, क्योंकि बंध के समान उनके उदय के विच्छेद का अभाव है। यानी चार ही गुणस्थान है, और गुणस्थान की अपेक्षा वहाँ तो कोई उदय की विच्छित्ति होती नहीं है, तो इसलिए उस अपेक्षा भी उसमें तुलना नहीं हो सकती, परीक्षा नहीं की जाती। पांच ज्ञानावरणीय चार दर्शनावरणीय, अब ये सोदय से बनती है या परोदय से उसकी बात चल रही है। हाँ ये ध्रुवबंदी है और इनका उदय भी चलता है, हा? तो ये तो स्वोदय में ही उसका बंध होता है। पंचेंद्रिय जाति तेजस कार्मण शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श अगुरु लघु त्रस बादर पर्याप्त स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग आदेय यश कीर्ति निर्माण उच्च गोत्र और पांच इंद्राय, इनका स्वोदय से ही बंध होता है। ये तो इनके लिए तो इन्हीं का उदय हर समय चल रहा है। निद्रा प्रचला साता व असाता वेदनीय बारह कषाय पुरुष वेद हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, इनका स्वोदय परोदय से बंध होता है, क्योंकि ये अध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। समचतुरस्र संस्थान प्रत्येक शरीर और उपघात का स्वोदय परोदय से बंध होता है, क्योंकि संस्थान नाम कर्म विग्रह गति में नहीं है, प्रत्येक शरीर नाम कर्म भी नहीं है उसका उदय, उपघात का भी उदय वहाँ विग्रह गति के बाद शुरू होता है, परंतु वहाँ उसका बंध है तो हम कहेंगे परोदय से बंध है, क्योंकि विग्रह गति में इनके उदय का अभाव है। परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहार गति और सुस्वर, इनका स्वोदय परोदय से बंध होता है, क्योंकि अपर्याप्त काल में इनके उदय का अभाव होने पर भी बंध देखा जाता है, क्योंकि अमुक पर्याप्ति पूरी होने पर उसका बंध उदय शुरू होता है ना, जैसे शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर परघात का उदय होगा, विहाय गति का होगा, बाद में उच्छ्वास का, फिर बाद में सुस्वर का। विशेषता यह है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि के इनका स्वोदय से बंध होता है। क्यों ऐसा? उनमें अपर्याप्त अवस्था नहीं है। मनुष्य गति, औदारिक शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्रषभ सहनन, मनुष्यानुपूर्वी और अयश कीर्ति, इनका परोदय से ही बंध होता है। इनका तो उदय ही नहीं ना उसमें, तो परोदय से ही होता है, क्योंकि देवों में इनके विरोध का, इनके उदय का विरोध है। उल्टा हो गया। हाँ, रुकते अभी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।